Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद रंगा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे. प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाबाश्यम.
थैंक यू सोनू. द टॉप स्टोरीज. India's core sectors register a three-month high growth of 6.7%. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Bill Gates, asserts to eradicate the digital divide. Government e-marketplace crosses 4 lakh crore rupees in gross merchandise value at the end of this fiscal year. And in the US markets, major stock indices exhibit mixed behavior. Dow Jones rises 0.12%, while Nasdaq Composite is down by 0.12%.
भारत के मूलभूत ढांचा क्षेत्रों में 6.7% की वृद्धि, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से की बातचीत. उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में असमानता दूर करने पर दिया बल. सरकारी ई मार्केट GEM में चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ. और अमरीकी बाजार में प्रमुख घरेलू सूचकांकों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा. डाउ जोन्स 0.12% की बढ़त में रहा, लेकिन नैस्डैक कॉम्पोजिट में 0.12% की गिरावट दर्ज हुई. और लेते हैं आज की पहली खबर जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है. शेयर बाजार हालांकि आज बंद थे, लेकिन आपको बता दें कि कल समाप्त हुए वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों को शानदार मुनाफा हुआ है. कल वित्त वर्ष के आखिरी कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी सूचकांक में कुल बढ़त पूरे वर्ष के दौरान 30% रही और BSE सेंसेक्स में 27% का कुल उछाल दर्ज हुआ. क्या कहेंगे आप, ये जो फिगर्स हैं 30% मोर देन 30% सेंसेक्स में उछाल जो वित्त वर्ष अभी समाप्त हुआ है, और सेंसेक्स में 27% आई बेग योर पार्डन, और निफ्टी में 30%. एंड अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो मिड कैप में 64%, स्मॉल कैप 68%. हाउ मतलब कितने आप एंथुजियास्टिक हैं इन फिगर्स को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, ये जो फिगर्स जो हैं ये हम जो एक साल पहले क्या हुआ था स्टॉक मार्केट में उसको भूल जाना हमें नहीं चाहिए था. 2022-23 में स्टॉक मार्केट गिर गया था. करीबन 2 या 1% की गिरावट आई थी अगर पूरी वित्तीय वर्ष में 22-23 के देखें तो. उसके ऊपर ये जो 27% जो निफ्टी की जो वृद्धि हुई है ये बहुत ही अच्छी वृद्धि है. मार्केट में जो अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है, जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ का जो बायोन्सी जो है, सरकार के खजाने में जो 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 स्ट्रेंथ दिख रही है, और ओवरऑल डिमांड जो इकोनॉमी में है उसको ये दर्शा रहा है कि स्टॉक मार्केट अच्छा हुआ है. और फॉरेन मनी जितना आया है उतना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में मनी आया है. अगर आप देखें करीबन मेरे ख्याल से 2,60,000 करोड़ की जो वो आई है, तो और इधर नेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी उतनी आई है. पर ये जो 27% जो है, अगर आप पिछला 10 साल का जो आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 10 साल में ये सिर्फ दूसरी बार है जो 27% की निफ्टी की वृद्धि हुई है. एक बार हुई थी जो कोविड साल के बाद 70% की एक साल में बढ़ गई थी, और बाकी जो सारी जो वृद्धि हुए हैं तो ये तो मुमकिन है कि 10 साल में अगर दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है तो अर्थनीति का जो जो डिमांड सिचुएशन है, ग्रोथ सिचुएशन है, और जो लॉन्ग टर्म जो एक ग्रोथ पोटेंशियल जो है उसको देखते हुए स्टॉक मार्केट अपने आगे बढ़ रहा है.
या बट मिस्टर भट्टाचार्य, व्हाट वुड यू से दिस ब्लिस्टरिंग पेस ऑफ ग्रोथ, यू नो ऑलमोस्ट 30% इन अ ईयर्स टाइम, इज इट बैक बाय फंडामेंटल्स? एंड स्पेशली आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बिकॉज सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव ऑल्सो पॉइंटेड फिंगर टुवर्ड्स देम लाइक सेबी एंड आरबीआई. Could there be a bubble build-up, especially in the mid-cap and small-cap segment?
Let me say that this is probably, if you take out the year-on-year growth rates, if you take the March 2020 as the base when the census and Nifty fell dramatically,
that's
post-COVID, you might say that the bull run started after that. And then this is the end of the fourth year of the bull run. Now, if you look at the history of bull runs, you will see that in the fifth year of the bull run, you see some deceleration. Some, as they say, the bull, you know, gets a little tired.
Yes.
So I won't be surprised if 2024-25, the bull run shows signs of weakness.
Okay.
And this is not unrelated to the fundamentals of the economy either, because if you have going to notch up a growth rate of close to 8% in the current financial year, which is going to end in 2 years, then I would imagine maintaining a growth rate of 7% over that, the delta will not be there. So it will actually, we will see that 8% growth this year, and there is 7.4% or 7% growth rate next year. You look at the corporate earnings growth rate, which have done very well this year. It remains to be seen how well they can build on this again.
Yes.
So there is every possibility that there would be some weakening of the market sentiment for the next year. Having said that, the real worry signs are not so much in the overall broad index, but actually in the mid cap and the small cap. It is in the mid-cap and the small-cap, as you just now pointed out, is the growth rate is 60% in the year and 69% growth rate. Now, this is a growth rate that...
It seems to be unrealistic.
That many people believe that there is some sort of a froth in this segment particularly. So, one has to be a little careful. One has to be a little cautious. And in any case, in your portfolio allocations... equity should get a decent share if you want to make quick money, but there are many other instruments where you can actually allocate money and stay still safe and get good returns. There is gold, there is debt, there is even real estate, there is the gold ETFs. So we are talking only about right now the equity market, and the equity market can tend to get volatile, especially after having seen 27% increase in Nifty.
So, आपको लगता है कि ये जो volatility की आप बात कर रहे हैं, ये ज्यादा stem हो रही है retail investors की जो over enthusiastic participation है उसकी वजह से, क्योंकि हमने demat accounts में देखा है और उनके जो participation है in terms of amount of money that they are putting in, वो भी बहुत ज्यादा है. So,
देखिए हमारी जो stock market की जो depth जो है, अगर आप volume of investors देखेंगे, वो ज्यादा नहीं है. तो और उनके जो जिस इन्वेस्टर्स कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, दैट इन्वेस्टर्स कम्युनिटी इज इन द टॉप हाफ ऑफ द इकोनॉमी, और उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ रेट देखा है, काफी अच्छी उनकी वृद्धि दर है, इनकम अच्छा हुआ है, तो वो नेचुरली इन्वेस्ट और भी करेंगे और कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए ये आपको स्टॉक मार्केट में गेंस जो है वो आ रही है. ये एक नैरो बेस है. ये अगर आप ढूंढना चाहेंगे कि ये कितना वाइड बेस है, मैं समझता हूं कि इस नैरो बेस के में स्टॉक मार्केट बहुत सारे जो सूचक हैं हमारे इकोनॉमी के, वो एक सूचक है, बहुत सारे अन्य सूचक भी हैं, उन्हें भी हमें देखना चाहिए.
वेल लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू आवर बिजनेस प्रोग्राम मार्केट मंत्रा ऑन आकाशवाणी.
आप अन्य सूचक की बात कर रहे थे, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रो फिगर्स आई हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे. देश के 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी में 6.7% की वृद्धि हुई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, इस्पात, कच्चा तेल, विद्युत और रिफाइनरी उत्पादों में सकारात्मक वृद्धि हुई. ये 3 महीनों की सबसे अधिक वृद्धि है. सीमेंट उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फरवरी में 10.2% बढ़ा, कोयला उत्पादन में 11.6%, कच्चे तेल के उत्पादन में 7.9% और विद्युत उत्पादन में 6.3% की वृद्धि हुई। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 11.3%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन 2.6% और इस्पात निर्माण 8.4% बढ़ा। उर्वरक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.5% गिरावट देखी गई। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में 4.9% और इस वर्ष जनवरी में 4.1% की वृद्धि हुई थी। जो कोर सेक्टर ग्रोथ है उसके आंकड़े हम देख रहे हैं, 3 मंथ हाई पे हैं, लगभग 7% पे पहुंच गए हैं। आपको लगता है कि जो बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ को लेकर हों, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस को लेकर हो, वो सबसे तालमेल खा रहे हैं अलॉन्ग विद द स्टॉक मार्केट ग्रोथ? हमें
देखिए, इधर कोर सेक्टर के जो नंबर जो आते हैं वो वैल्यू बेस्ड नहीं है, वॉल्यूम बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्चुअल जो इंक्रीज हुआ है वो दर्शा रहा है वो। और आपने जैसे बताया हमें कि फर्टिलाइजर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर में वृद्धि हुई है और वो रियल वृद्धि हुई है। नाउ इसका जो कोर सेक्टर का जो शेयर होता है सबसे ज्यादा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका करीबन 70% का शेयर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर छोड़ दें हम, बाकी सारे सेक्टर ये आईआईपी में आएंगे, तो हम ये एक साफ कह सकते हैं कि फरवरी का जो आईआईपी आएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिगर आएगा, वो हमें काफी सरप्राइज करेगा पॉजिटिव साइड में। तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है, जो पहले जो हमने कहा था कि जो जीडीपी ग्रोथ जो अभी तक हम 8.1 और 8.4 पहले जो 3 तिमाही में आई थी, तो यह साफ लगता है कि इन फिगर से कि जो चौथी तिमाही जो है उसमें भी जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा। वो 5.9 के जगह में मेरे ख्याल से 6.5 भी हो सकता है। अगर वो हो तो मैं समझता हूं पूरे साल की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 8 के करीबी आएगी। और इसको ही देखते हुए मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट भी इसको देखकर एक इंडिकेशन मान रहा है कि इकोनॉमी में अभी काफी एक स्प्रिंग है, उसके कदम में वो ग्रोथ पोटेंशियल है अभी, इन्वेस्टमेंट अभी भी बरकरार है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट अभी आना बाकी है, पर सरकार काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ नहीं है।
मिस्टर भट्टाचार्य, व्हाट वुड यू से एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, व्हाट ऑल आर द नेक्स्ट यू नो बिग ट्रिगर्स? वील हैव द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। Do you expect, you know, I want to put in that $1 million question, do you expect a cut in the interest rates by the Reserve Bank of India?
Well, going by what the recent statements have come from the Reserve Bank of India, expecting a cut in interest rates at this point in time will probably have to be ruled out.
Okay.
Because there is inflationary potential.
Not even at 25 basis points?
Well, I think they will not take any risk at this point in time. Please remember, election season is on, and any negative news on inflation can also play a havoc with the overall the mood in the market. So I think Reserve Bank of India is not unconscious of the fact that the election season is on. So the Monetary Policy Committee, and is going by the earlier statements also, I don't think they will take any chance. What will happen is probably a softer indication will come from the Fed, US Fed, and that might influence the RBI to maybe change its stance, because the stance will have to be changed before the rate has to be cut. So note that last time when the policy came out in February, the stance was not even changed.
Okay.
So to expect that in one go they will change
completely reverse it,
I don't think so. Maybe a stance will be changed in April and in June with the new government in place.
Yeah. So we are talking about the triggers also. What could be the next big trigger? The earnings season starting from, say, 10th or 15th of April, when the numbers start pouring in for the fourth quarter and for the entire fiscal also?
Absolutely. I think the earnings season, clear indication, and also what you will see is a lot of job numbers will come out in the public domain. And those will have a lot of influence and impact on the market's sentiment.
But agar hum 3-4 saal pehle dekhe jab covid aaya to bahut zyada economic impact hua tha, hit hui thi economic figures. Ab aapko lagta hai ki pure vishv mein par khas kar bharat mein resilience aa gayi hai ki itne geopolitical tensions chal rahe hain jo lagatar chalte hi ja rahe hain, red sea ka bhi hua, lekin phir bhi hamari jo mazbooti hai wo हुई है।
डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत काफी लार्ज है और उसमें सरकार ने ना कि केंद्र सरकार ने, अगर आप पूरी जो इन्वेस्टमेंट की जो गति को देखें, आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्टमेंट नहीं की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ असिस्टेंस से भी जो सारे जो हमारे जो प्रदेश जो हैं उन्होंने भी काफी उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो ओवरऑल अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता रहे उससे मैं समझता हूं जो रेजिलियंस जो आती है, और इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो रहा है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट्स में जो लोगों को काम मिल रहा है, लोगों की जो सुविधाएं आ रही हैं, तो उससे काफी उसका इम्पैक्ट बढ़ता है और वही हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और जिस रेजिलियंस की आप बात कर रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है।
Well, let's move on and take a look at some of the other news items as well. Prime Minister Narendra Modi has said that digital public infrastructure is a big requirement in itself, and government is extending the digital facilities to all the villages. Interacting with philanthropist Bill Gates, Mr. Modi said technology can play a big role in agriculture, health and education. On artificial intelligence, Mr. Modi said people can misuse the technology if they are not given proper training. He also said if people use AI as a magic tool, it would lead to grave injustice. Mr. Modi suggested that there should be clear watermarks on AI-generated content so that nobody is misguided. Prime Minister Modi said women are more open to adopting new technology in India. He said the Namo Drone Didi scheme is going on successfully, and the mindset has changed now as Namo Drone Didis are becoming pilots who can navigate drones. On renewable energy, Mr. Modi said India is making rapid advancements in the sector. He said the nation wants to make advancements in green hydrogen sector as well. Mr. Bhattacharya, what the Prime Minister is saying is really true. You know, as far as the government is concerned, in the past couple of years, the digital public infrastructure has actually gone rural. And now, you know, that has, you know, brought down the digital divide as such. And also this point is really well taken, that AI could play actually havoc if it is not kind of regulated and seen to it that it is used properly.
There is no doubt that India's digital public infrastructure, particularly in the payment space, has made huge strides, not just in India. And if you look at the numbers, they all tell you, I don't need to repeat the numbers. But what has also happened is that this success is being replicated, and foreign countries are coming to India, and how the international payment space can also benefit from this. So the technology that the National Payment Corporation of India has created with this Bheem app, and then there are so many other apps, UPI, it's a wonderful thing. But the AI, the cautionary note that the Prime Minister has sounded is much needed. Because AI can be a double-edged sword. If you know how to use it, and if it is misused, so therefore, it's still early days, but certainly, at some point, this technology needs some sort of close supervision and some regulation, without which the benefits of AI will probably be lost to the rampant misuse of this new phase.
And we are discussing economic, business and stock market news of the day, and along with our expert AK Bhattacharya in the studios.
और डिजिटल स्पेस से ही जुड़ी है हमारी अगली खबर. सरकारी ई मार्केट केंद्र जीईएम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4,00,000 करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ. ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना से 2 गुना है. आज नई दिल्ली में जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इससे जी ईएन पोर्टल की अनूठी डिजिटल क्षमताओं और कार्य क्षमताओं का पता चलता है। इससे पुष्टि हुई है कि सार्वजनिक खरीद में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के कारोबार होता है। उन्होंने कहा कि इस सकल कारोबार में लगभग 50% योगदान सेवाओं की खरीद का है। पिछले वित्त वर्ष में जीईएम पर सेवाओं की खरीद की तुलना में इस वर्ष 205% की वृद्धि हुई। श्री सिंह ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने वाले प्रयासों से जीईएम ने घरेलू कारोबारियों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर वाणिज्य मामलों के अपर सचिव अनंत स्वरूप भी उपस्थित थे। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सुविधा है जो छोटे कारोबारी हैं, स्मॉल यू नो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए
टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये तो इसमें दो राय नहीं है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। एक जमाने में डायरेक्टर जनरल और सप्लाई एंड डिस्पोजल हुआ करता था, वो एक पूरी तरह से ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड सिस्टम से फिजिकल फॉर्मेट में परचेजेस एंड प्रोक्योरमेंट हुआ करती थी। ये प्रोक्योरमेंट में टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है, इसमें पारदर्शिता है, इसमें क्विक डिसीशन मेकिंग पॉसिबिलिटीज हैं। और आप कन्याकुमारी में बैठे हैं या कश्मीर में बैठे हैं या गुजरात के कोने में बैठे हैं या नॉर्थ ईस्ट के कोने में बैठे हैं, आप एक सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए आप अपना एक जो एक टेंडर में या कॉन्ट्रैक्ट को आप सप्लाई करेंगे या जीतेंगे, उसके लिए आप इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कंपटीशन बढ़ता है, इससे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो अपनी मोनोपोली को अपने रोक लग जाती है थोड़ी बहुत, और जो जो बेस्ट कॉस्ट में वो सर्विस मिलता है। पर जो असली बात जो मुझे लगा इस खबर से वो है कि अगर 50% जो आपकी प्रोक्योरमेंट सर्विसेज में हो रही है, इसका ये पूरा दर्शाता है कि ये हमारी जो अर्थनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है। अगर 4 लाख करोड़ के अंदर 50% अगर आपके सर्विसेज प्रोक्योरमेंट हैं, मैं मानता हूं कि हमारी ये हमारी जीडीपी की जो कंपोजिशन जो है वो पूरे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक जीएम में भी यही चीज हम कैप्चर कर रहे हैं, तो ये एक मैं समझता हूं कि ये खुशी की बात है।
एंड जेम इज प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इवन द स्मॉल यू नो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स
एंड ऑल्सो मोर देन द यस ऑफकोर्स देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड बट इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी of putting up your wares and abilities and capabilities on a platform which allows you not just to sell it to the government, but also somebody else can go into that GM site and see that service and the product being on offer, and I can get in touch with him and then buy that. So it becomes a kind of a government sector Amazon or Flipkart in different spaces. So the opportunities and the possibilities in this platform are huge, immense, and not fully tapped. And I'm sure it will be tapped in days and weeks and months to come.
Right. Let's take a look at the commodities sector. The government has ordered mandatory declaration of stock position of wheat. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution elaborated in its release today that traders, wholesalers, retailers, big chain retailers and processors all in states and union territories have to declare their stock position of wheat with effect from the 1st of April till further orders. It said the decision has been taken in order to manage the overall food security and to prevent hoarding and unscrupulous speculation. Department of Food and Public Distribution is maintaining a close watch over the stock position of wheat and rice to control prices and ensure easy availability in the country. Mr. Bhattacharya, this really is a very proactive step that the government is stepping in before the problem arises.
Yes, also we are discussing about the monetary policy review to take place in April. And please note that if you look at the overall retail prices, they probably are not going up very much. They are staying stable. But if you look at the food and beverages segment, there the increase is still noticeable. So therefore, and wheat accounts for a good chunk of the food and beverages weightage in the retail price, the consumer price index. So, and this not only helps controlling prices, but it also makes sure that diversion of the wheat
does not take place,
and what's more important is that diversion can take place, and India is there are ways of and export market is still there, so maybe it should not go into the illegal export market. So that step will also be taken. We have to make sure that these checks and controls don't lead to unnecessary harassment of people who are doing business the right way.
Right. Let's take a look at the U.S. markets as well. After a stellar start to the year for stocks, investors are on guard for potential bumps in the next quarter. Investors are expecting Federal Reserve to deliver an anticipated interest rate cut by June and turn their focus on the health of upcoming earnings season. Today, the Dow Jones Industrial Average rose 0.12%, the S&P 500 gained 0.11%, while the NASDAQ Composite was down by 0.12%. And very quickly, in the USA, former cryptocurrency entrepreneur Sam Bankman has been sentenced to 25 years in prison for a major fraud case linked to the collapse of FTX.
आपसे ज्यादा चाहेंगे अमेरिका में क्या लगता है आपको अब सॉफ्ट लैंडिंग इज मोर ऑर लेस गिवन या रिसेशन का अभी भी कोई डर है
मुझे लग रहा है कि जो फेड का जो रुख जो उन्होंने अपनाया है इन्फ्लेशन जब तक न 2% में आता है आकर रुकता है और पिछले हफ्ताओं में एक स्टेटमेंट भी आया था जिससे कि जब तक न वो 2% में आए तब तक नहीं वो करेंगे और उधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ही मैनेजेबल है सो मैं समझता हूं कि सॉफ्ट लैंडिंग होना कोई ऐसी कोई नामुमकिन नहीं है
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हटाचार्जी शामिल होने के लिए
And before we close, a quick look at the top stories. India's core sectors registered 3-month high growth of 6.7%. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Bill Gates, asserts to eradicate the digital divide. Government e-marketplace crosses 4 lakh crore rupees in gross merchandise value at the end of this fiscal year. And in the US, major stock indices exhibit mixed behavior. Dow Jones rises by 0.12%, while NASDAQ is down by 0.12%. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.